Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. If you are calling us from outside Delhi, please do not forget to add the prefix code 011. Well, I'm your anchor, Lalima Aneja Dang, and with me is my co-anchor, Subodh Mishra.
धन्यवाद लालिमा और नमस्कार श्रोताओं. कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है. आज सोमवार है और हर सोमवार की तरह हम आपके प्रश्नों को भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे. व्यापार जगत, अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. दिल्ली से बाहर के और मोबाइल से फोन करने वाले श्रोता इससे पहले स्टडी कोड 011 डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
धन्यवाद सुबोध जी.
पहले हेडलाइंस के साथ लालिमा.
All right, thank you, Subodh. Let's begin with the headlines, friends. Benchmark domestic indices decline nearly 1%. Sensex drops over 700 points. Nifty closes below 23,900. India's retail inflation rises to 3.4% in March this year. And global crude oil prices jump over $100 a barrel.
देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में लगभग 1% की गिरावट. सेंसेक्स 700 अंकों से ज्यादा लुढ़का. निफ्टी लगभग 23,900 के नीचे बंद हुआ. इस वर्ष मार्च में देश की खुदरा मुद्रास्फीति दर 3.4% हुई और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल के ऊपर.
And before we move on, here's a disclaimer for our friends. Well, the views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
लालिमा, शुरू करें खबरों का सिलसिला पहले.
जी.
और वैसे खबरें पढ़ने से पहले हमारे पास एक श्रोता जुड़ गए हैं मुंबई से. उनके पास चलते हैं, देखते हैं क्या सवाल लेकर आए हैं कार्यक्रम की शुरुआत में.
जी.
मुंबई से मयूर हमारे साथ हैं. स्वागत है आपका, सवाल पूछे.
थैंक यू सर. गुड इवनिंग टू एवरीवन. माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू यू नो द गोल्ड प्राइसेस बीइंग हाई. जनरली ये देखा गया है कि जब भी वॉर सिचुएशन रहती है या जियोपॉलिटिकल टेंशन रहता है, गोल्ड प्राइसेस जनरली टेंड टू गो अप. बट इन दिस केस ये लग रहा है कि जैसे भी वॉर के सिचुएशन थोड़े ठंडे पड़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीज फायर या वॉर खत्म होने की न्यूज आ रही है, तो गोल्ड इज एक्चुअली रिएक्टिंग अगेंस्ट द थंब रूल और वो ऊपर भाग रहा है. यू नो इट इज गोइंग हायर. सो दिस इज फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन इन द मार्केट एंड आई वॉन्टेड टू टेक द यू नो द रीडिंग ऑफ आर panelists also, the esteemed guests, why suddenly gold is behaving differently as against geopolitical tensions this time around.
Right.
Thank you.
Thank you, Mayur, for your question. And I'm glad you asked because I think a lot of people are wondering what's happening with the yellow metal. Mm-hmm. So, but if you actually see price movement in yellow metal, it is also linked to what is happening to the dollar. And if dollar has seen a very significant appreciation, which is to an extent impacting the gold. And also, if you see, there is been movement on crude prices and all. So there was some selling by some central banks of the gold to maintain their currencies vis-a-vis dollar, which is why you saw that there was a dip in dollar, dip in gold prices to an extent.
All right. I hope he's happy with that explanation. We move on to Delhi. And we have Amit on the line. Yes, Amit, please ask your question.
जी नमस्कार सभी को.
नमस्कार. जी जी सवाल.
मैडम मैडम आपसे मेरा प्रश्न है मैम कि जैसे कि हमारे हम सभी जानते हैं कि ऑयल एंड गैस के लिए हम ज्यादा इंडिपेंडेंट हैं गल्फ कंट्रीज पे. तो मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि हमारे पास इसके अल्टरनेटिव सोर्स क्या है एनर्जी के, और गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी लाइक मान लीजिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर के अलावा हमारी जो ऊर्जा जरूरत की अपने आप पर निर्भरता करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है, विस्तार में बताइए. धन्यवाद.
अमित जी धन्यवाद आपका. एक बहुत ही अहम सवाल, क्योंकि इस समय सब कोई ये जानना चाह रहा है कि सरकार क्या कर रही है. हमारी निर्भरता जो है आयात पर बहुत हद तक हो गई है और बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं. तो सरकार ने ये जो क्राइसिस आया, जो एक लड़ाई चल रही है उसके तहत, तो सरकार जो है ऑल्टरनेट सोर्सेस, सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं हो, बाकी और भी सोर्सेस जहां से हम आयात कर सकते हैं, एक तो पहला कदम ये उठाया जा रहा है. और दूसरा ये कि ग्रीन एनर्जी, ग्रीन ट्रांजिशन में हम कितना और जल्दी से जल्दी हम अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, उसमें कितना कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं. तो आपने देखा घर घर सोलर जो है, गांव घर में सोलर, पीएम सूर्य घर के तहत ये योजना लाई गई, तो उसी के तहत ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, उस पर बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं. तो एक स्ट्रैटेजी है जो कि तैयार है, उसको कार्यान्वित किया जा रहा है.
And Deepshika, I think the fact that we have a separate ministry for renewable energy speaks volumes about the fact that the government is serious about pushing this forward.
Absolutely. And Prime Minister himself has, you know, set this target of net zero.
Yes.
Which, and we've not sort of fallen behind on this. We are moving ahead with it.
कई तरफ से काम चल रहे हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी भी ढूंढी जा रही है. हम अभी स्टोरेज पर भी काफी काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हम सौर ऊर्जा से बिजली तो काफी पैदा कर ले रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर पा रहे उतना. तो अब स्टोरेज की समस्या है, अभी उस पर
स्टोरेज
काम हो रहा है.
के भी तहत अब बहुत सारा काम होने लगा है.
पूरी दुनिया में एक्चुअली चल रहा है,
पूरी दुनिया में चल रहा है. हम भी काफी तेजी से उस पर काम कर रहे हैं.
आइए अब शुरू करें. हम पहले हम खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं, शेयर बाजार का हाल देखते हैं कि क्या रहा. देश के शेयर बाजारों के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग 1% की गिरावट दर्ज की गई. सेंसेक्स 703 अंक गिरकर 76,848 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 208 अंक नीचे 23,843 पर आ गया. आज कमजोर वैश्विक संकेतों के साथ कारोबार की शुरुआत लगभग 2% की गिरावट के साथ हुई. अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नौसैनिक घेरेबंदी की घोषणा से बाजार पर असर पड़ा, लेकिन कारोबार के दौरान दोनों सूचकांकों में कुछ सुधार आया और निचले स्तरों पर लिवाली के कारण वह दिन के न्यूनतम स्तर से थोड़ा ऊपर बंद हुए.
Benchmark domestic equity indices dropped nearly 1% today. The Sensex fell 703 points to close at 76,848, while Nifty slipped 208 points to settle at 23,843. Earlier, markets opened around 2% lower amid weak global cues after United States President Donald Trump announced a naval blockade of the Strait of Hormuz. However, as the session progressed, both indices paired their losses and recovered from the day's lows, aided by value buying. And shall we take a look at we have Tinku from Bihar online. Yes, Tinku ji, sawal puchiye.
Namaste sir. Namaskar.
Namaste
Tinku ji.
Sir, mera sawal hai, ek gold leke us gold khareed ke rakha jaye या गोल्ड के किसी पॉलिसी निवेश के चलती चलाया जा रहा है, या ये स्वर्ग जो प्लेट लगाया जाता है बिजली के निर्भर नहीं, ऊर्जा सौर ऊर्जा के लिए इसके लिए कोई सरकार योजना लागू कर रखा है? यही दो सवाल है इसका पर।
देखिए टिंकू जी, सोना जो है इस समय आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी उतार चढ़ाव हुई थी, तो जब भी गिरे अगर आप निवेश के जरिए आप निवेश करना चाहते हैं उसमें लॉन्ग टर्म के लिए, तो जब गिरता है तो आप जब गिरे तो आप खरीद सकते हैं जितनी आपकी पोर्टफोलियो का, लेकिन 5-10% आप सोने में रखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से।
जी, और साथ में ये भी हम याद दिला देते हैं अपने श्रोताओं को हमेशा कि अब फिजिकल गोल्ड मतलब सोने को ठोस रूप में खरीदना,
उसके अलावा भी डिजिटल जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं सोने में निवेश करने के, तो वो भी आप देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप बाजार से जाके सॉलिड सोना खरीदें,
और क्योंकि उसकी सुरक्षा बहुत मुश्किल हो जाती है सोने को बचा कर रखना अपने आप में।
राइट
जी, अगले कॉलर भी हमारे साथ हैं, थाने से गुरुनाथ, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
जी सर नमस्ते।
नमस्कार।
नमस्ते गुरुनाथ।
सर मेरा क्वेश्चन है, सर अभी ये जो दोनों देशों के जो डेलीगेशन हुआ पाकिस्तान में, जो ये वॉर के विषय में तो कुछ समझौता तो नहीं हो पाया है, तो क्या ये आगे चल के मतलब अनसर्टेनिटी ऐसी बनी रहेगी? और ये जो जो और सिचुएशन में जो ये जेट फ्यूल का जो दाम बढ़ाते हैं और उसके साथ ही एयरलाइंस तुरंत अपने टिकटों के दाम बढ़ाते हैं, तो क्या आगे चल के मतलब सामान्य स्थिति होती है तो ये लोग दाम कम करने में कतरते हैं, जल्दी करते हैं? और तीसरा ये सवाल है मेरा कि ये जो और सिचुएशन में हमारे देश में जो इन्फ्लेशन क्या बढ़ा है?
देखिए गुरुनाथ जी, इस समय लड़ाई के बारे में और क्या स्थिति बनती है ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोशिश सब तरफ से जारी है, विश्व के बहुत सारे नेता हैं जो कोशिश में लगे हुए हैं कि लड़ाई अब दोबारा शुरू ना हो, लेकिन आज जैसे डेडलाइन है और पहला पढ़ा सुबोध जी ने भी, तो अब देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है।
जी, और जैसे इन्हें तेल की कीमतों के बारे में पूछा था, वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और मांग और आपूर्ति से सब कुछ डिसाइड होगा,
और मुद्रास्फीति पर हम बातचीत करेंगे, आज डेटा भी आया है, थोड़ी बढ़त हुई है, और जाहिर सी बात है कि जब कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं दुनिया में तो उसका असर कुछ हद तक तो हमारे देश पर भी आएगा, क्योंकि हम आयात करते हैं कच्चा तेल।
जी, और हम ये बता दें सेंसेक्स में शामिल 30 में से 27 कंपनियों के शेयर आज नुकसान में रहे, सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों पर गौर करें, मारुति के शेयरों में 4.6%, बजाज फाइनेंस और इंडिगो में 2.8% तथा रिलायंस में 2.6% की गिरावट आई। इसके उलट आईसीआईसीआई बैंक के शेयर लगभग 2.2% बढ़ गए, एनटीपीसी में 1.5% से ज्यादा और एक्सिस बैंक के शेयर लगभग 0.2% ऊपर आ गए।
Well, among the sectoral indices at the BSE, 22 out of 25 sectors logged losses. Among the top laggards, auto plunged 2.1%, energy as well as services fell over 1.3%, and oil and gas dropped over 1.2%. Among the outperformers, utilities surged almost 1.4%, power rose 0.9%, and telecommunications advanced almost 0.4%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,573 companies declined, 1,790 advanced, and 201 remained unchanged.
जी, और रुपए का हाल ये रहा कि विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 64 पैसे गिरकर 93.37 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती दिखाने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 98.89 पर कारोबार कर रहा था।
एंड नाउ वी आर जॉइंड बाय वीरेंद्र फ्रॉम दिल्ली। जी वीरेंद्र जी, सवाल पूछिए।
नमस्कार जी, मेरा पहले तो सभी अपने अतिथियों को
नमस्कार वीरेंद्र जी।
मैडम मेरा सवाल ये है कि जैसे हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो मुझे किसी ने बताया कई बार ऐसा भी होता है कि वो कंपनी फिजिकल रूप से है नहीं, सिर्फ कागजों में है, फिर भी उनका शेयर मार्केट में बिक रहे हैं। ऐसा होता है कि कंपनी ना भी हो या बंद हो गई हो फिर भी शेयर बिक रहे हैं? ये मतलब इन्वेस्टर को कैसे पता चलेगा कि हम जिस कंपनी के शेयर खरीद रहे हो मतलब वर्किंग में है कंपनी या बंद हो चुकी है या है ही नहीं?
देखिए वीरेंद्र जी, हमेशा हम लोग जब भी बातचीत करते हैं तो ये हमेशा कहते हैं कि आप जांच पड़ताल कीजिए और उसके बाद निवेश कीजिए। तो ये सब जो जिस तरह के आपने कहा कि पेपर पे कंपनी है, पेपर पे कंपनी जो है वो लिस्टेड जो है सेबी जो है इस मामले में काफी सजग रहता है, तो अगर कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है, वो प्रोसीजर्स और कंप्लायंसेस जो है वो नहीं फॉलो करती है, तो उसको डीलिस्ट कर, सेबी उसको नोटिस देता है, उसके ऊपर काफी जांच पड़ताल रखता है, ध्यान रखता है उसका। तो जब कोई भी निवेश कर रहा है किसी भी कंपनी में, तो ये जांच पड़ताल आप भी करिए, आंख खोलकर निवेश कीजिए, ताकि कोई आप देखें कि उसका हिस्ट्री क्या है, उसका टर्नओवर क्या है, जो डेटा जो है उसका पब्लिक स्पेस में कितना है आपको जो मिल रहा है, तो तभी आप उस किसी भी शेयर में पैसा लगाइए।
जी, और महाराष्ट्र से के शुक्ला हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
जी नमस्कार सभी को।
नमस्कार,
नमस्कार शुक्ला जी।
और मेरा क्वेश्चन ये था कि जो चुनाव होता है बार बार, जैसे स्टेट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का या क्षेत्रीय, तो उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ता है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक गोल्ड और डॉलर में क्या संबंध है, उसका रुपए पे क्या इफेक्ट पड़ता है?
जी देखिए, चुनाव के ऊपर अगर आप देखें शुक्ला जी, तो प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है कि चुनाव जो है ये बार अलग अलग समय पे जैसे हो रहे हैं राज्यों में या देश में, तो इसको एक साथ किस तरह से किया जा सकता है, इस पर काफी डिस्कशन भी हुआ, कमिटी ने भी अपने सुझाव दिए हुए हैं और इस पर एक मत बनाने की कोशिश चल रही है। तो इलेक्शंस भी एक कॉस्ट तो होती है इकॉनमी पर, लेकिन अगर आप देखें कि इसमें तरह आप इसको अलग अलग नजरिए से अगर देखें, तो चुनाव की वजह से जो खर्चा होता है, राजनीतिक पार्टी जो करती हैं खर्चा, उससे अर्थव्यवस्था को भी, उस इलाके के उस राज्य की अर्थव्यवस्था को भी थोड़ा बल मिलता है, डिमांड को भी बल मिलता है, प्लस एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, आपको इलेक्शन जो है लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं वहां पर, तो एक मजबूती देता है डेमोक्रेसी को। तो चुनाव के अलग अलग अगर आप देखें तो उसके अलग अलग आयाम हैं, तो अर्थव्यवस्था को हाँ काफी हद तक उससे कंट्रीब्यूशन उसका रहता है।
Also, once the dates are announced, the policies have to be frozen.
Policies and all,
no
yes.
New policies can be made.
Absolutely. Hmm. वो ये है कि कोई आप सरकार जो है अपने पार्टी के हित में कुछ ऐसा निर्णय ना ले आए। दूसरा आपने सवाल किया था कि डॉलर और गोल्ड, तो अगर आपने सुना होगा हमने प्रोग्राम में शुरुआती दौर में ये सवाल की बात की थी कि डॉलर का प्राइस जो है, डॉलर का दाम अगर बहुत बढ़ता है, उसका भी असर सोने पे होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो करेंसी जो सबसे ज्यादा चल रही है वो डॉलर ही है, उसी में सारा ट्रांजैक्शन होता है।
ऑलराइट, वी हैव नाउ एसपी सिंह ऑनलाइन एंड ही इज कॉलिंग अस फ्रॉम दिल्ली। हां जी एसपी सिंह जी, आप सवाल पूछिए। नमस्कार,
गुड इवनिंग जी। आई वांट टू नो द फ्यूचर ऑफ गोल्ड एंड आई वांट टू नो व्हिच आर द फोर्सेस व्हिच ड्राइव द गोल्ड टू सच अ हाई प्राइस इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, एंड सिंस द वॉर इज गोइंग ऑन वी वर थिंकिंग गोल्ड विल गो अप, नाउ इट हैज गॉन डाउन।
एसपी सिंह जी, देखिए गोल्ड में जो करेक्शन आया, बहुत समय से उसकी बात चल रही थी कि थोड़ा करेक्शन लाने की हो सकता है आए, लेकिन ये जो करेक्शन आया, ये जैसा कि पहले भी हमने कहा कि डॉलर जो है वो बहुत शार्पली बढ़ा है, चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ, क्रूड प्राइसेस जो हैं, कच्चे तेल के दाम वो बहुत बढ़े, तो इन दो फैक्टर्स का काफी हद तक असर हुआ। उसके अलावा कुछ एक जो रिजर्व बैंक हैं दूसरे देशों के, उन्होंने भी अपना सोना जो है बाजार में बेचा है, अपनी करेंसी को डॉलर के मुकाबले स्टेबलाइज करने के लिए, तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि गोल्ड के ऊपर थोड़ा प्रेशर आया है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब गिरे डिप्स पर खरीदिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदिए, और दूसरे और तरह के निवेश हैं, सिर्फ सोना जो है ठोस रूप में नहीं खरीद, मतलब की जरूरत है, आप उसे डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। उसके अलावा अपने पोर्टफोलियो का 5-10% तक रखिए, उसके अलावा और डिस्ट्रीब्यूट करके रखिए पोर्टफोलियो को।
जी, अगली खबर है एशियाई और यूरोपियन मार्केट्स की। दुनिया के कुछ अहम इलाकों में फिर से तनाव बढ़ने के बाद जोखिम से बचने की कोशिश में आज अधिकांश एशियाई शेयर सूचकांकों में गिरावट आई। हांगकांग के हैंगसिंग और साउथ कोरिया के कोस्पी दोनों में 0.9% की गिरावट आई। जापान का निकेई 0.7% से ज्यादा गिरा। सिंगापुर के स्ट्रीट टाइम्स इंडेक्स में 0.1% की गिरावट दर्ज की गई। इसके उलट चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक मामूली सकारात्मक रुझान के साथ बंद हुआ। यूरोप के प्रमुख शेयर बाजार आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार तैयार किए जाने तक जर्मनी का डैक्स 1.1% से ज्यादा नीचे था। फ्रांस का कैक 1% से अधिक नीचे था और लंदन का फुटसे भी 0.5% से ज्यादा नीचे चल रहा था।
एंड वी आर नाउ जॉइंड बाय शंकर फ्रॉम भोपाल। जी शंकर जी, अपना सवाल पूछिए।
गुड इवनिंग
जी गुड इवनिंग।
वी इंपोर्ट ऑलमोस्ट 85% ऑफ आवर क्रूड ऑयल। प्राइसेस हैव बीन होवरिंग फ्रॉम $60 टू $100 पर बैरल, बट द रिटेल प्राइस मार्केट हैज नॉट सीन मच चेंजेस डिस्पाइट बीइंग दैट देयर इज अ डीरेगुलेशन बाय गवर्नमेंट। That means there is a heavy influence from the government on the prices of control of prices. Why don't we have the same policy like in America, where the prices are very transparent, formulas are very transparent, so that exactly what prices they bought crude is reflected in the retail prices, or this is being manipulated so that you know the government can garner the vote and all that. So why not we have a transparency in pricing of diesel and petrol,
right?
So that there is in the there is no maneuver.
Yes. We got your question.
This is in the interest of the taxpayer.
We got your question. Yes, Deepshika.
Absolutely great question, Shankarji. But you know, one thing which you have to understand is that what government is doing is trying to protect the economy, try to shield the economy and the citizens from a sharp shock which could have come. So if you see, when prices are high, government cut excise duty, and so it is absorbing the higher price. And of course, when the prices were low, they also did not pass on, because obviously they were building these buffers. So had you know government passed on, and had the prices been what they are globally, everyone would have felt that pinch.
Right.
जी, अगले कॉलर है लखनऊ से हितेश। स्वागत है आपका, सवाल पूछे।
गुड इवनिंग। दो क्वेश्चन है। पहला कि जब कोई भी कंपनी से बोनस या स्प्लिट अनाउंस करती है, तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए क्या सही रहता है, बोनस और स्प्लिट से पहले लेना या उसके बाद लेना? और दूसरा क्वेश्चन ये है, जब कंपनी बायबैक करती है तो हमें उसमें पार्ट लेना चाहिए? क्योंकि अगर कंपनी खुद के शेयर खुद खरीद रही है, तो यानी उनको विश्वास है कि उनकी कंपनी आगे बढ़ेगी, तो हमें उसमें निवेशित रहना चाहिए या बायबैक में अपने शेयर दे देने चाहिए?
देखिए, बायबैक का मैं पहले सवाल लेती हूँ हितेश जी। बायबैक में आपको देखना होगा कि प्राइस लेवल क्या है, आपका इंटरेस्ट कितना है, आपकी खरीदी कितने की थी, बायबैक में आपको कितना रिटर्न आ रहा है। अगर उसमें आपको फायदा हो रहा है तो आप बायबैक में आप दे सकते हैं, और आगे फिर आप खरीद लीजिए जब डिप आता है उस स्टॉक प्राइस में। क्योंकि कंपनीज कई बार जब बायबैक कर रही होती हैं तो अच्छा खासा रिटर्न जो है वो निवेशक को मिल जाता है, ऐसा नहीं है कि उसमें रिटर्न नहीं मिलता है।
जी, बोनस तो, और स्प्लिट पूछा था।
बोनस और स्प्लिट जो आपका पहला सवाल था कि बोनस और स्प्लिट में ये है कि आपका एंट्री आप कब कर रहे हैं स्टॉक प्राइस में। कई बारी बोनस में अगर आप पहले हैं तो जाहिर सी बात है कि, और कंपनी बहुत मजबूत है, तो आपको रिटर्न काफी अच्छा मिल जाएगा आगे जाने के बाद।
जी, अगली खबर पर नजर डालें। बड़ी खबर है, भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च में सालाना आधार पर बढ़कर 3.4% हो गई, जो फरवरी में 3.21% थी। मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई बढ़कर 3.63% हो गई, जबकि शहरी इलाकों में ये 3.11% दर्ज की गई। अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक पर आधारित खाद्य महंगाई दर मार्च में बढ़कर 3.87% हो गई, जो उससे एक महीने पहले 3.47% थी। पश्चिम एशिया में जारी तनाव की वजह से वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव के बावजूद देश में महंगाई दर कुल मिलाकर लगभग स्थिर रही और भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमानित सीमा के भीतर बनी हुई है। और अगले कॉलर के पास चलते हैं हम, दिल्ली से राजीव हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें।
ये सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने एलजी इंडिया के 1511 रुपए पर मैंने 800 शेयर खरीद रखे हैं, तो उसे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए?
हम किसी विशेष कंपनी के शेयरों के बारे में इस कार्यक्रम में आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे, हमें अफसोस है। हम अगली खबर पे चले।
जी एब्सोल्युटली, वेल द गवर्नमेंट इज इंश्योरिंग 100% supply of LPG for domestic households and no dry out has been reported at any LPG distributors in the country. Addressing the inter-ministerial briefing in New Delhi this afternoon, Additional Secretary at Ministry of Heavy Industries, Dr. Hanif Qureshi, said that the government has also extended subsidies for electric three-wheelers under Prime Minister Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement PM E-Drive scheme by 2 years till March 2028. He also said time period for subsidies for electric two-wheelers are also extended by 3 months till July this year. Considering the supply chain issues due to the West Asia crisis, phased manufacturing program guidelines for trucks and buses has been relaxed by 6 months till September the 1st, 2026. And talking about crude oil, well, global crude oil prices jumped back above $100 a barrel today and supply concerns following rising geopolitical tensions. Brent crude was trading over 7.3% up at $102.02 per barrel, while West Texas Intermediate crude was trading over 7.4% higher at $103.75 per barrel when reports last came in. And talking about gold and silver, well, we've had so many queries on gold and silver. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading 0.8% down at 1,51,700 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% down at 2,38,590 rupees per kilogram a short while ago.
जी, और MCX में जून के वायदा कारोबार में सोना 0.8% गिरकर 1,51,466 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा, और मई वायदा की चांदी भी 2.3% के नुकसान के साथ 2,37,782 रुपये प्रति किलोग्राम पर दर्ज की गई।
दीपिका, when the gold prices go up, we say why, and we now we're asking it's going down.
Why is it why? Going down? I think that is what is
it. How would you analyze?
No, definitely, you know, you've seen what is happening in the stock markets, also happening in the commodity markets. Definitely, there's an overhang of what is going on in the West Asia conflict. So that, I think, will continue till there is clarity on, you know, how things move forward that side of the world. And also, you know, the upheaval in the currency markets, you know, that is also playing on the commodities, like we discussed earlier.
Yes.
So, yani, kai tarah ke factors, bahut sare karak, har taraf se
असर डाल रहे हैं, से असर डाल रहे हैं,
कुछ भी कहना मुश्किल है,
लेकिन तार जो है सबके जुड़े हैं, ये जो लड़ाई
चलिए आज वक्त इतना ही है दीपशिखा कार्यक्रम में आने और श्रोताओं के सवालों के बहुत अच्छे जवाब देने और सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सुबोध जी।
And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Benchmark domestic indices decline nearly 1%. Sensex drops over 700 points. Nifty closes below 23,900. India's retail inflation rises to 3.4% in March this year. And global crude oil prices jump over $100 a barrel. Well, friends, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Subodh Mishra. साइनिंग ऑफ, नमस्कार।
इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।